ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो, इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेज करना है खुद अपने आप को। पिछली कड़ी को देखें तो एक मिनट की इम्पोर्टेंस की बात हमारे सामने आई थी और हमने अपने आप से वादा किया था कि हर एक घंटे बाद अपने मोबाइल पर या अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमें याद आ जाए कि वो एक मिनट हमने अपने लिए निकालना है। उसमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, ना पीछे का सोचना है ना आगे का सोचना है, सिर्फ अपने साथ, अपनी सही पहचान के साथ। और मैं कौन हूं? मैं एक पावरफुल सोल हूं, मैं एक पावरफुल बींग हूं, मैं एक लवफुल बींग हूं। वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, और वो अनुभव हमें लगता है कि जरूर आप तक पहुंच रहा होगा कि कैसा आपका पूरा दिन गुजरता है। आज थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं और मैनेज सेल्फ को कैसे करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
मैंने तो सबसे पहले जाके यही किया था सिस्टर शिवानी, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों ने जो जिनसे हमने वादा लिया था कि ये जरूर करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते का अनुभव जो है वो हमने एक दूसरे के साथ तय किया कि हम देखेंगे हर एक मिनट के बाद, हर एक घंटे के बाद जो एक मिनट हमने अपने आप को दिया वो कैसा अनुभव करवाता है। एंड बिलीव मी, एक दिन के अंदर अंदर आई कैन फील कि आपकी वो थकान कम होती है और वो जो एनर्जी आपको हर एक घंटे बाद मिल रही है कहीं ना कहीं। पहले तो मुझे ये लगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूं, कि मतलब मैं सेल्फ टॉक है शायद, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक्चुअली आप देखते नहीं हो, वो रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, पर वो एंड तक आते आते आप ठीक रहते हो।
That's all that it is. It's basically a little rest. Rest और cycle को तोड़ना, वो जो ordinary thoughts का cycle है उसको तोड़ना, ताकि consciously pure elevated thoughts create करना, ताकि फिर वो एक नया cycle शुरू हो जाए। You know, एक positive, जो हम बार बार कह रहे हैं कि positive thinking करनी है पर होती नहीं है, तो वो अपने आप नहीं होगी ना, तो उसको कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग का साइकिल सेट हो जाए। अब कई बार भाई बहने कहते हैं नहीं होता है, बार बार एक घंटे के बाद एक मिनट नहीं निकाला जाता है, तो एक तो ये निकाला जाता है, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल अटेंटिव। और फिर एक आधी बार अगर मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं ना, जस्ट बिकॉज एक आधी बार मिस हो जाता है उसकी वजह से हम सारा दिन ही नहीं करें, हल्का रहे, टेंशन नहीं लेने, तो उसी की टेंशन हो जाती है कई
कि
बार
नहीं निकला, नहीं निकला।
ना, सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सपोज टू बी कि आप उसकी टेंशन ले लो कि मेरे से नहीं हुआ या मैंने नहीं किया, लेकिन एक बार शुरू में अटेंशन दे के करना पड़ता है, एक बार बेनिफिट होने लगता है तो यू नो थोड़े दिन के बाद, अबाउट लेट्स से 10 डेज, 10 दिन के आसपास के बाद आपको कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। आपका बॉडी क्लॉक अपने आप आपको याद दिला देगा कि एक घंटा हो गया है, एंड इट इज सरप्राइजिंग। आप कभी देखो कि एग्जैक्ट एक घंटे के बाद आपको याद आ जाएगा, एंड आप देखोगे ना घड़ी में एग्जैक्ट एक घंटा हुआ होगा। इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि वो बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, माइंड को आदत पड़ जाती है ना, जैसे लंच टाइम है तो पता चल जाता है।
इनफैक्ट मैं बता रही हूँ कि कई बार मेरा ना अलार्म नहीं भी लगा होता, 4 बजे एग्जैक्ट मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद 6 बजे भी एग्जैक्ट उठ जाती हूँ, इवन इफ अलार्म नहीं लगा,
तो वो बॉडी क्लॉक है।
और फिर मुझे जैसे मैं उठती हूँ मेरे को याद आता है कि अच्छा ये 6 बज गए होंगे, एंड जब अलार्म बजाओ या नहीं बजाओ मैं देखती हूँ घड़ी तो 6 बजे होते हैं।
सिमिलरली ये हर एक घंटे के बाद एक मिनट, थोड़े दिन सर्व करने के लिए अलार्म और ऐसे एक्सटर्नल मेजर्स की जरूरत पड़ती है। 8-10 दिन 15 दिन के बाद यू डोंट नीड टू पुट एन अलार्म एवरी टाइम ऑन योर फोन, वो आपको नेचुरली याद रहेगा। लेकिन अगर पहले नहीं किया और सोचे नेचुरली याद रहेगा हर एक घंटे के बाद, तो वो याद नहीं रहता है। हम सोचते हैं नहीं याद रहेगा मुझे, ऐसे नहीं याद रहता, वो एक पैटर्न को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद वो नेचुरल याद
रहता है। इनफैक्ट दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस कि हमारी ये जो बॉडी है ये वेट करती है कि हम इसे इंस्ट्रक्शंस दें,
माइंड भी वेट करता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें।
एक्चुअली यू नो ये इस बात को रीइंफोर्स करता है कि अगर हमने उसको करेक्टली क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं,
हम अपने मन को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, क्या सोचना है, कब सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या मुझे नहीं, हम क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हम समझते हैं मन अपने आप वैसे ही चलेगा, फिर वो वैसा नहीं चलता, वो तो यहाँ वहां का इधर उधर का सोचता है, फिर हम कह देते हैं मन तो बहुत चंचल है,
फिर किसी और की इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है ना वो, किसी किसी फिल्म की इंस्ट्रक्शंस ले ली, कहीं और की इंस्ट्रक्शंस ले ली।
तो अगर मन को डिसिप्लिन करे, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि ना कईयों को लगता है मन को कंट्रोल करना तो इट साउंड्स वेरी यू नो वेरी स्ट्रेसफुल कि जैसे मन को कंट्रोल करना, लेकिन एक सिर्फ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन भी नहीं कहे उसको, कहे एक राइट वे ऑफ थिंकिंग, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं निग्लेक्ट हुआ था, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपना ही मन है, अपनी बात क्यों नहीं मानेगा.
बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं अपने ही बच्चे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे. वेरी ट्रू. इट इज सो ब्यूटीफुल एंड इन फैक्ट इट कैन बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप.
इट इज अ रिलेशनशिप विद द सेल्फ. इसीलिए हमने कहा था पहले प्रायोरिटी फर्स्ट विद द सेल्फ, देन विद फैमिली एंड देन विद वर्क. दैट इज व्हाट.
और इनफैक्ट यहाँ फिर मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि सेल्फ के साथ हमने रिलेशनशिप तो क्रिएट किया, अब मुझे मैनेज क्या करना है.
एक्चुअली जब हम स्कूल जाते हैं तो हम हमेशा कहते थे कि स्कूल में तीन बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं जिसको हम 3 आवर्स कहते हैं, कि रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. तो उसको हम हमेशा स्कूल में 3 आवर्स कहते थे कि ये 3 आवर्स बेसिक होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. ये अगर आप फाउंडेशन से सीख लेते हो तो आपकी पूरी जो एजुकेशन है और आगे आपकी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है, वो 3 आवर्स पे. तो जब हम स्कूल और कॉलेज से पास आउट होने वाले होते हैं तो हमें लगता है वाओ द लर्निंग पीरियड इज ओवर, नाउ द फन पीरियड विल स्टार्ट. यू नो, सारी लर्निंग वाला जो फेज था मेरे जीवन का वो खत्म हो गया. तब हमें ये नहीं पता होता कि जो लर्निंग है वो एक्चुअली अब शुरू हुई है. अभी तो हम सिर्फ मेमोराइज कर रहे थे, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही थी. हमारी मेमोरी में हम भरते जा रहे हैं जिसको हम कहते थे मगअप कर दो, मेमोराइज कर दो चीजों को. लर्निंग तो अब शुरू होती है, विच इज द लर्निंग द लेसन्स ऑफ लाइफ. कि जीवन में कई ऐसी बातें आएंगी जिनको हमें तुरंत अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा, डिसीशंस लेने पड़ेंगे. वो हमने बहुत ज्यादा उस यात्रा के दौरान सीखा नहीं होता. तो जो बहुत सारा आज हमारा स्ट्रेस और ये सब है, इसका मूल कारण ये है कि हमने वो वाली एजुकेशन नहीं ली है. हमारे जीवन के 4 पहलू हैं जिनको हमें इस जीवन की यात्रा के दौरान फोकस भी करना पड़ता है और उन पर इक्वल ध्यान भी देना पड़ता है. उसको हम 4 आवर्स कहते हैं. जो ये 3 आवर्स थे, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, एंड 4 आवर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, रोल्स एंड रिसोर्सेस. रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेस. अब ये 4 को कैसे मैनेज करना है ये हमें
नहीं आता,
किसी ने नहीं सिखाया नहीं. बेसिकली दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ना स्कूल में और ना घर पे. नो वन वॉज टीचिंग अस दैट.
वी वर सपोज इवन अवेयर ऑफ देम, यू नो, कि दे एग्जिस्ट. चलिए हम रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक को तो पता है हमें किस स्थूल रूप में है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कहा
रिलेशनशिप,
रोल्स और रिसोर्सेस,
कैसे इनको 4ों को मैनेज करना है. तो ज्यादा जो आज हमारे कुछ संघर्ष जीवन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें शायद हमने सीखा नहीं या सिखाया नहीं कि अपने आप को कैसे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना, रिलेशनशिप्स में कैसे, यू नो, मिलाकर सबके साथ चलना, किस समय पर कौन सा रोल प्ले करना, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कौन सी पहले जिनको मैनेज करना. बाहर की तो सब पता है रिसोर्सेज, लेकिन मेरे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसको मुझे मैनेज करना है. तो सेल्फ मैनेजमेंट में हम ये 4 पहलुओं को अपने जीवन में देखते, जिसमें सबसे पहले आती रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसमें हम यही कहेंगे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हमारा पूरा बचपन है या हमारे बड़े होने का प्रोसेस है, तो हमें ये सिखाया गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.
बी रिस्पॉन्सिबल.
देन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस, रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी, रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर योर फ्रेंड्स, लुक आफ्टर योर ब्रदर्स, रिस्पॉन्सिबल टू डू समथिंग ऑलवेज. तो हमेशा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती तो टू डू समथिंग, कुछ करने की जिम्मेवारी उठाओ, ये करने की जिम्मेवारी. तो जिम्मेवारी हमेशा कुछ करने के लिए थी. We never realized that responsibility was to be someone. It was always to do something.
I should become, like, I should be somebody in the sense?
Let's say, happy. So to be happy, is that a responsibility?
There's no way.
To be loveful. Did anyone teach me that is my responsibility?
No.
They every said, do this. This is your responsibility. Aaj ye kaam pura karke rakhna, ye aapki zimmewari hai. Apni padhai puri karna. इतने अच्छे मार्क्स लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है. तो जिम्मेवारी हमेशा
करने में आते थे.
लेकिन मुझे फील क्या करना है, मुझे अंदर कैसे रहना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो करने वाली शक्ति है, जो मार्क्स लेने वाली भी शक्ति है, जो पढ़ने वाली भी शक्ति है, जो सारा काम, जो ये करने वाली शक्ति है, उसको कैसा रहना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट नो वन सॉ. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ओनली केम आउटसाइड.
It never,
तो The responsibility was always in doing, not in being. Now we are not human doings. We are human beings.
लेकिन responsibility में शिवानी basically आप किसी को एक जिम्मेदारी जब दे रहे होते हैं, सौंप रहे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं स्वमान बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर हम
See again, you're going the other way around. आप जब कुछ कर रहे होते हो तब आपका स्वमान बढ़ रहा हाँ. होता है. आपका स्वमान रख कर आपको वो करना है. अगेन वी ट्राइंग टू लुक एट इट आउटसाइड इन कि ये करेंगे
तब आपको
तब हमारा स्वमान बढ़ेगा. ये करेंगे तो आप खुश रहेंगे. ये करेंगे तो ये होगा.
नहीं, बट जनरली अगर हम देखें तो पेरेंट्स भी या टीचर्स भी या आपके बॉस जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर आप करेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे.
अच्छे स्टूडेंट तो डेफिनेटली माने जाएंगे. जिस चीज पर आप जिम्मेवारी लेंगे वो स्किल तो आपके अंदर आ ही जाएगा. डेफिनेटली इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स से बचपन में सिखाया गया स्कूल में, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योर रूम क्लीन. लेट्स से एक बच्चे को हमें ये सिखाया जाता था. तो जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हम अच्छी तरह से करके दिखाते ना. नाउ व्हाट अबाउट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग पीसफुल? व्हाट, हु विल टीच मी दैट?
I don't even know that I can be responsible. See, अगर मुझे ये responsibility दी जाए कि मैं इस कमरे को clean कर लूँ, तो वो तो मैं कर सकती हूँ.
To take responsibility of cleaning your mind. See, so responsibility definitely. जहाँ आप जिम्मेवारी लेंगे, आप वो कर लेंगे. यही अगर हम यहाँ भी जिम्मेवारी ले लें,
तो वो तो oh my god, if I look at it, it's like it's somebody else's responsibility and nobody even bothered.
Someone else's responsibility. कि मेरे मन की स्थिति again से it went out to that. It was someone else's responsibility. तो what happened? Doing, doing, doing में करते करते हम वो जो being है उसको तो भूल ही गए. तो responsibility of you doing तो we became more of human doings. अगर आप अपना सारा काम बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप एक बहुत responsible व्यक्ति हैं. आप एक बहुत जिम्मेवार है. बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर वो सारा काम आपने दर्द में रहकर किया, सो विल आई से दैट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आई वॉज रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग बट नॉट रिस्पॉन्सिबल इन बीइंग. तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये नहीं कह रहे कि बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सारा काम करने वाला कौन? तो पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो जो करने वाला है अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर वो बाहर जो काम करेगा वो भी तो अच्छी तरह से ही करेगा. It can never go wrong. If it is the being is healthy, the doing will automatically be healthy. लेकिन being को याद ही नहीं कि वो being है और वो सिर्फ doing, doing, doing में आ गया, तो उसका सारा focus doing में हो गया.
और हम कितनी बार कहते हैं कि मुझे जो भी हो रहा हो मैं सब कुछ ठीक ठाक तो कर रहा हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ अपनी जिम्मेदारियां तो उठा रहा हूँ, मुझे जो हो रहा है forget about that, लेकिन मैं बाहर से सबके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ.
अब मेरा जिम्मेवारी है घर को संभालना. मेरे अब बड़े हो गए ना, तो अब जिम्मेवारी क्या है? ऑफिस में काम करना. कोई बात नहीं, टेंशन हुई तो कोई बात नहीं, गुस्सा हुआ था, जिम्मेवारी क्या थी? सो जितना वो ड्रिल इन हो गया डूइंग डूइंग डूइंग, तो वो डूइंग को करने के प्रोसेस में वो जो बीइंग था वो कितना निग्लेक्ट हो गया. तो इसलिए काम तो सारा अच्छी तरह से हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन द बीइंग पार्ट क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये करना है, ये करना है, ये करना है, बच्चों को बड़ा करना है, ऑफिस का काम करना है, करना है, करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी. तो मैं वो सब कुछ करती गई. ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि मुझे अपना ध्यान रखना है. तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया गया था
कि अपने ऊपर तो काम करना ही नहीं है,
वो तो मतलब दैट वाज नॉट अ टॉपिक डिस्कस्ड एट ऑल ना.
वी डिडंट इवन रियलाइज कि ऐसा कुछ हम कर भी सकते हैं, अपने ऊपर भी सोच सकते हैं.
तो बचपन से ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हमेशा बाहर कर्म से ही रिलेटेड था कि अगर आप ये जो आपको काम दिया गया है अगर आप इसको ठीक से कर लेते हो, रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं,
आप गुड बॉय हो, आप गुड गर्ल हो अगर आप ये काम ठीक से कर ले.
सो दैट वॉज डूइंग. नाउ स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस दैट यू आर अ बीइंग, यू आर नॉट अ ह्यूमन डूइंग. तो आपका सारा फोकस डूइंग पे नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग मीन्स टू बी. एंड जो ये बीइंग है दिस इज एट द कोर ऑफ ऑल द डूइंग. तो अगर ये बीइंग स्टेबल नहीं होगा तो जो आप सारा काम करेंगे वो भी अफेक्ट हो जाएगा.
तो हम कितनी गलत फहमी में जीते जाते हैं एंड वी कंटिन्यू टू डू, और हम सबके लिए करते जाते हैं. मतलब आई नो सो मेनी पीपल दे कीप ऑन वर्किंग फॉर अदर्स, मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने इसके लिए, अपने उसके लिए,
अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं.
हाँ, और वो कहते और खुद कंटिन्यूस दर्द में, तो वो इट्स नॉट एक्चुअली राइट.
दे हैव टू आस्क देमसेल्फ्स इफ दैट इज द राइट,
एंड दे फील कि नहीं मैं किसी को कुछ कह तो ना रहा हूँ,
क्योंकि हमें लगता है हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं,
सारे काम तो कर रहा हूँ ना जो सो कॉल्ड जरूरत,
क्योंकि जिम्मेवारी की लिस्ट में ये नहीं था. जिम्मेवारी की लिस्ट में सारा बाहर वाला कर्म था. दैट्स वाई वी सेड नोबडी टॉट अस एज अ चाइल्ड, नोबडी टॉट अस इन स्कूल कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज है, क्योंकि सेल्फ बाहर था. सेल्फ मतलब कौन? एक स्टूडेंट. सेल्फ मतलब कौन? एक मदर. सेल्फ मतलब वाइफ. तो वो वाइफ, वो मदर, वो स्टूडेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
निभा हर तरह के उसको काम करते हुए कर रहे.
तो वो एक सेल्फ का गलत आंसर होने से I am all these roles. तो मैं रोल सारे अच्छी तरह से responsibility पूरे कर रहे हैं, लेकिन who am I? वो answer नहीं हुआ, तो वो self पर ध्यान नहीं गया. अब जब हमें ये समझ में आ जाता है कि वो जो being है that is at the foundation. Suppose let's say आप एक दिन सुबह एक grumpy से mood में उठते हैं, you know your mood is not very good. उस दिन सारा कुछ भी अगर अच्छा होता जाए तो भी आपको मजा नहीं आएगा. Even your doing part सब कुछ ठीक हो रहा है, but if your mood is not right, nothing will go right for you. अगर आप एक दिन उठते हैं व्हेन यू वेरी स्टेबल इन द मॉर्निंग, अगर उस दिन कितनी भी परिस्थितियां आ जाए,
यू आर एबल टू हैंडल.
सो दैट मींस व्हाट इज इट? दिस इज द बीइंग, दिस इज द डूइंग. तो फाउंडेशन किसके हाथ में है? बीइंग के हाथ में. अगर बीइंग कमजोर है आज, तो सारा जो डूइंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. और अगर आज बीइंग स्टेबल है, तो कितना भी मुश्किल डूइंग उसको करना पड़े तो भी वो आराम से हो जाएगा. सो द बीइंग इज एट द कोर पार्ट ऑफ इट. तो एज वी ग्रो अप हमने बहुत सारी बातें सीखी, हमें इतना कुछ सिखाया गया, मैकेनिकल चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जीवन को लेके सब कुछ सिखाया गया, लेकिन ये नहीं किसी ने सिखाया कि जो इमोशनल डायमेंशन है दैट इज एट द कोर. वो है जो सारे डिसीशंस लेगा, वो है जो एटीट्यूड बनाएगा, और उसी की क्वालिटी फिर एक्शन में आएगी. ये किसी ने नहीं सिखाया. हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हम स्पेशलिस्ट बनते गए बहुत सारी फील्ड में, कोई क्रिएटिव के क्षेत्र में, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में, हम उधर बाहर तो स्पेशलिस्ट बन गए. लेकिन व्हाट अबाउट हियर? क्रिएटिविटी विद माय कॉन्शियसनेस, वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया. जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हम डिग्रियां तो लेते गए, डॉक्टरेट्स भी लेते गए, ये सब किस काम में आ रही है? मुझे धन कमाया जा रहा है ताकि मैं अपनी जीवन को चला सकूं. लेकिन ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि ये जो कोर वैल्यूज हैं यहाँ पर, ये मेरे हर रिश्ते को और मेरे हर निर्णय को इन्फ्लुएंस करेंगे. एवरीथिंग दैट आई वाज बीइंग टॉट वाज आउटसाइड. यहां तक के सोशल लेवल पर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि हम समाज के लिए जिम्मेवार हैं, हम विश्व के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन हम स्व के लिए जिम्मेवार हैं
नहीं. एक्चुअली हमें तो हाँ किसी ने बताया भी नहीं. ऑफकोर्स यही कि समबडी एक्चुअली हैज टू टेल अस, तो समवेयर वही परमात्मा के बता रहे.
दैट इज वाई. तो कहीं ना कहीं उल्टा हमने सोचा कि हम अपने लिए तो जिम्मेवार है ही नहीं. इट वेंट द अदर वे राउंड कि मेरी जिम्मेवारी तो दूसरे ले रहे हैं.
और कितनी बार तो हम बोलते हैं मेरी जिम्मेवारी तो वो भी लेगा.
यस, द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई क्रिएशन. थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा रिस्पॉन्स मेरी रिस्पॉन्सिबल. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स अबिलिटी.
हाउ डू आई
अबिलिटी टू रिस्पॉन्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. द वर्ड इट सेल्फ हैज द मीनिंग रिस्पॉन्स अबिलिटी. लेकिन हमने उसको सारा बाहर करके, तो उसमें शब्द में कितना सुंदर है कि आप किस तरह से परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है. तो इसलिए, लेकिन फिर कई बार हमें लगा कि कैसे हो सकता है ये, मेरी जिम्मेवारी कैसे हो सकती है? आज विश्व में इतना कुछ हो रहा है. लेट्स से हम जहां रहते हैं वहां टेररिज्म है. लेट्स से मैं जहां रहती हूं वहां अर्थक्वेक हो गया, वहां कुछ एपिडेमिक फैल गया. डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू रिस्पॉन्ड? यस, मे बी इन एनी ऑफ दीज सिनेरियोज हमें लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है. लेकिन ऐसे सिनेरियो में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टेबल रहेंगे, जिनका पूरा ये ध्यान है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या हो रहा है, फिर भी मेरा अगला थॉट, मेरा अगला एक्शन, उसकी क्वालिटी मैं डिसाइड करता हूं. वो अपने आप को परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं जाने देंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जीवन में सिचुएशंस तो
आते ही रहेंगे,
आने ही वाले हैं, लेकिन मुझे कॉन्शियसली अपना रिस्पॉन्स चूज करना है. ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट इज वाई बी सेड सेल्फ फर्स्ट. जहां आप अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट बनाएंगे अब अगली बार कि मेरी कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं, तो उसको टॉप किससे करेंगे?
सेल्फ.
एंड दैट्स व्हाई वी सेड सेल्फ, फैमिली, वर्क. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक की तो परिवार अपने आप ठीक होगा, तो वर्क प्लेस अपने आप ठीक हो जाएगी. तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे इनकल्केट करें, उसके लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने कई बार रिपीट की है, एंड दैट इज यू आर द क्रिएटर. ये भले अब जितनी बार बोलने से, बार बार बोलने से लगता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो औरों को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट फॉर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बार बार, हर रोज, हर पल ये याद रखना पड़ेगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, एक्शन, एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन. मेरे ये सारी जितनी है ये मेरी क्रिएशन है. तो इससे क्या होगा, हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा. अभी भी भले हमें ये बात समझ में आ गई है, लेकिन जितनी बार भी हम सारा दिन में रिएक्ट कर जाते हैं, यू नो, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, मीन्स हम उस टाइम हम क्या कह रहे हैं कि कोई ना कोई और जिम्मेवार है, और ये जो मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना अंदर, जो मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है, इसका कारण कोई ना कोई और है. तो एक दिन के लिए इसको अगेन एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ले कि सारा दिन कॉन्शियसली ध्यान ही रखें, लेकिन जब भी रिएक्ट कर जाएं, फिर भी रिएक्शन कुड बी एज सिंपल एज ये बारिश की हो रही है, ये कोई बारिश का मौसम है, यू नो, समथिंग एज सिंपल एज दैट. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज
एनी काइंड ऑफ इरिटेशन एक्चुअली,
नाउ दिस इज माय डिस्कम्फर्ट, बट आई ब्लेम द वेदर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल. वेदर इज नॉट इन माय कंट्रोल, लेकिन बार बार कैसा मौसम हो गया, कितनी गर्मी है, कितनी ये है. नाउ दिस इज अ सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स. है, एक्सेप्ट करो. जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगी जितना आपको लगता है. तो इसलिए एक दिन के लिए चेक करें कि छोटी मोटी भी जो रिएक्शंस होते हैं, बड़े बड़े तो हो ही रहे हैं, उसको तो आप स्टॉप करके देखेंगे, लेकिन छोटे छोटे भी अगर आप रिएक्ट करते हैं, देखेंगे कि हम किसको ब्लेम कर रहे हैं. मौसम को ब्लेम कर रहे हैं, दुनिया को, समाज को, परिवार को, किसी ना किसी को, या फिर उसको भी ब्लेम कर देते हैं. तो जैसे ही किसी को किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा हो गए, तो उस पल हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ एट दिस टाइम.
इनफैक्ट इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं तब भी हम ही जिम्मेदार है, जिम्मेवार हैं उसके.
Absolutely.
कोई और किसी, तो हम डिपेंडेंट नहीं हो जाते फिर किसी.
Absolutely.
के मतलब अगर हम देखें ये कि बहुत सुंदर कोई फूल देखते हैं, या बहुत सुंदर कुछ हम प्रोग्राम देख रहे हैं, या बहुत अच्छा नजारा कोई देख रहे हैं, और हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, या हमारे अंदर जो फीलिंग क्रिएट होती है, इट मींस उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई ना, मैंने क्रिएट किया.
एब्सोल्युटली. हर चीज तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं. दर्द भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, लव भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हैप्पीनेस भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं. तभी तो हम कहते हैं सो पावरफुल है, कि आपको किसी भी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं.
तो मैं जो कुछ भी एक्चुअली फील करता हूँ मेरी अपनी क्रिएशन है.
एवरी थॉट
व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ नहीं है. लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि कुछ एक के साथ हम अच्छा फील मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ अगर, तो मैं कुछ के साथ तो बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ के साथ बहुत परेशानी वाली.
वो हम देखेंगे जब रिलेशनशिप्स में देखेंगे कि वो भी तो मेरे अपने परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना उनके प्रति. मेरा आपके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, तब मैं आपके साथ उस तरह से फील करूंगी. लेकिन वो भी फीलिंग किसने क्रिएट की?
मैंने
क्रिएट की. आपने नहीं क्रिएट की. यू डोंट हैव दैट पावर. आप जो हैं, जैसे हैं. अब मेरा आपके प्रति जो दृष्टिकोण होगा, मेरी जो वृत्ति है आपके प्रति, आई विल क्रिएट द फीलिंग इमिडिएटली. या तो आपको याद करते ही वो फीलिंग आ जाएगी, या आपसे मिलते ही वो फीलिंग आ जाएगी. बट इट इज बेस्ड ऑन मैंने आपको किस कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया हुआ है. या सो द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेम्बर इज दिस, दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, परसेप्शंस, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, सारी मेरी अपनी क्रिएशन है।
वंडरफुल, यहाँ से हम जो है एक बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव में लेना शुरू करेंगे कि मैनेजमेंट, क्योंकि जहाँ हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वहाँ फिर वो मैनेजमेंट का प्रोसेस भी आसान हो जाता है। शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू शांति।
अगर देखें तो अमेजिंग, लाइक अभी तक हम सारी चीजों के लिए जिम्मेवार अपने आप को मानते थे कि ये मेरी जिम्मेवारी है, चाहे वो ऑफिस का काम है या कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन हम सबसे ज्यादा भूले हुए थे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रति हमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार होना चाहिए, और वो हम खुद। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपने प्रति जिम्मेवार हो सकते हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मैं हो सकती हूँ। अगर हम देखें तो हम ये भी कहते आ रहे हैं अभी तक कि बच्चे, अगर हम बच्चे हैं तो जब हम छोटे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी वाइफ है, मैं वाइफ हूँ सपोज, तो मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो तो, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तो अगेन इट्स सो पावरफुल। यू नो, कितना आसान हो जाएगी जिंदगी अगर मैं खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी। और यहां से शुरू होगा कि इट मींस कि पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि जो भी मैं फील कर रहा हूं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो मैं खुद क्रिएट कर रही हूं। तो एक दिन के लिए हम ये ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट उसको देखें और क्रिएट करें जब भी कि मैं कौन हूं, और उस थॉट प्रोसेस को साथ लेकर।
और अगर रिएक्ट करें कभी भी सारा दिन में, तो तुरंत स्टॉप करके अपने आप को याद दिलाएं, आई एम रिस्पॉन्सिबल,
नो वन एल्स। उसका मतलब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई है, तो मैं आंसरेबल भी अपने आप को हूं, जिम्मेवार भी अपने लिए हूं। वेरी ट्रू। तो यहां से एक नई सोच, एक नया बदलाव शुरू हो सकता है। और इनफैक्ट जो छोटी छोटी बातों को लेकर अभी भी हम डिप्लीट हो रहे होते हैं, यहां उसको स्टॉप किया जा सकता है। कोई ऐसी बात, कोई सवाल आज की कड़ी से जुड़ा है, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक दिन ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सारी निभाते हुए भी अपने साथ आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये बात आज आप अपने साथ करते जाएं, और उसके बाद फिर जैसे अनुभव हमें होते जाते हैं हम साथ शेयर करते जाते हैं। तो आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे, अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें